ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्तिहे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणान्तिके। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग उत्तरायण कॉलोनी के सौजन्य से आप लोगों को भागवत कथा सुनने का अवसर मिला है। जीवन में यह अवसर कभी कभी आता है। यही जो हम लोग बैठे हुए हैं इसी में लोग लाखों लाखों रुपया लगाते हैं, सब ये भागवत सुनते हैं साथ में। हम लोगों का यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल है, वो तो भाग्य से हम लोग आए हैं। अब बिना खर्चे का किसी का कुछ भी नहीं और अनायासी रूप में वो कथा आप लोग सुनने को यहाँ पर आए हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने, परम वितरागी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को उनके अंतिम समय में ये कथा सुनाई थी। अभी हमने जो प्रणाम श्लोक मैंने उच्चारण किया ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। इसमें उन्होंने बतलाया यं प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव गोस्वामी जी ये वितराग ऋषि हैं, सुखदेव गोस्वामी के पुत्र रूप में जन्मे। कैसे जन्मे इसकी भी एक उपाख्यान है। ये सुखदेव गोस्वामी जी तोते जैसे दिखते हैं, किंतु ये राधा कृष्ण के, विशेष करके राधा जी के ये सुख हैं, जिसको राधा जी अपने हाथों में रखकर और उन्हें श्याम नाम पढ़ाया करती, कृष्ण नाम पढ़ाया करती। उस समय में किसी समय ये सूख बरसाने में राधा जी के हाथ पर बैठे हुए थे और ये दाने अनार की, अनार का दाना उन्हें खिला रही है और कह रही है तुम कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। सूख पक्षी किसी की बात करने में बड़ा चतुर होता है, ठीक उसका स्वर नकल कर लेगा, जैसे स्वर में कहेंगे वैसे ही वो बोल देगा, ठीक राधा जी के स्वर में ही जैसे उनको पढ़ाती थी ठीक वैसे ही कृष्ण नाम उच्चारण करने। तुलसीदास जी का एक सुख का था, सुख पक्षी वो उच्चारण करता था, चित्रकूट के घाट पर वैशंतन की भी तुलसीदास चंदन भी से तिलक देख। तो वो पूरा का पूरा उच्चारण करके ऐसा कहता, जैसा सिखाओ वैसा ही सीखेगा। राधा जी का सुख कृष्ण नाम का था। एक दिन उनके हाथ से उड़ गया, पक्षी का स्वभाव उड़ जाना, उड़ गया और ठीक वहीं से चला सीध में नंदगांव पहुंच गया। दोनों आमने सामने, अधिक दूर नहीं, 4 माइल है, अधिक दूर नहीं है। पहले आमने सामने ये गांव था, वहीं से दिखता था, अभी भी दिखता है, पैदल ही लोग जाते आते थे, अब रास्ता भी बन गया है। तो वो सुख नंदगांव आ गया और वहीं कुंज के पास में एक कमाल का पेड़ था, उस पर बैठ गया और वहीं कृष्ण कृष्ण करने लगा। कृष्ण ने देखा जैसे ये सुख, ये कौन ऐसा बोल रहा है सुख कृष्ण कृष्ण, मुझे कही तो राधा जी बोल रही हैं। राधा जी कहाँ ही खोजने लगा, अभी थोड़ा सा दूरी रहे
बहुत।
देखा ये राधा जी कहाँ है, ठीक उनके स्वर में बोल रहा है बहुत मधुर। इधर उधर देखा जो तमाल के पेड़ के ऊपर में एक सुंदर छोटा सा सूप, लाल लाल होठ उसके चुंच है और कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहा है। उन्होंने उसे बुलाया बड़े प्यार से और कृष्ण की आवाज सुन करके ऐसा कौन जीव है जो नहीं आएगा, वह झट उनके हाथों पर बैठ गया और उसे अपने हाथों से सहलाने लगे। फिर से बोलो तो क्या बोल रहा था, तो उसी स्वर में उसने कृष्ण 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 बहुत मधुर बोलता है ये तो। बस उनको लोभ हो गया कि ये मेरा सुख मेरे पास में है। इतने में वो सुख पक्षी बोलता है, फिर एक श्लोक बोला, मैं सुख पक्षी हूं, मेरे जैसा दुर्भागा इस जगत में कोई नहीं जन्मा, यदि कोई दुर्भागा है तो मैं प्रिया जी के हाथों पर, किशोरी जी के हाथों पर बैठा था और मुझे वो अनार का दाना खिला रही थी अपने हाथों से और बड़े प्यार से कृष्ण कृष्ण मुझे कह रही थी। मैं दुर्भागा, मैं उनके हाथों से उड़ गया और उड़ के यहाँ पर पहुंच गया, शोक करने लगा। देखो तो ये राधा जी के जितने भाव हैं ये सब इसने ग्रहण कर लिए और उनको आते बस बार बार उसे पढ़ाते। मधुमंगल इतने में आ गए, उनके सखा बार बार पढ़ा रहे हैं। इतने में 2 सहेलियां राधा जी की आई, ललिता और विशाखा जी। बोलिए कृष्ण ये सुपक्षी हमारी सखी का है, ये से दे दो, अरे तुम्हारी सखी का, यदि तुम्हारा है तो तुम उसे बुला लो, मैं से थोड़े पकड़ करके रखा हूँ, जैसे ये नहीं जा सकता, तुम्हें छोड़ करके तुम्हारी बात छोड़ करके ये, यदि हमारी सहेली यदि आ जाती वो बुलाती तो वो चला जाता, किंतु हम लोगों से नहीं जाएगा, तो वो उनको आने दो, मैं तो ये सुख मेरा है मेरे पास रहे। कृष्ण उसे प्यार से रखने लगे। ललिता विशाखा जी गई मैया के पास, यशोदा जी के पास, बोली ये कृष्ण ने उनका पक्षी ले लिया है सुख पक्षी, उसके बिना वो रह नहीं सकती हैं, उसके लिए वो छटपट कर रही हैं, इसलिए जल्दी से लेकर के हमको दे दो, हम उनसे दे आए। और ये अभी तुम लोग ठहरो यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये जहाँ कृष्ण खेल रहे थे उनके हाथ से सुख पक्षी को ऐसे ले लिया, सब समय कीड़े मकोड़े के साथ में बैठता है और उनको पकड़ करके कहा जाए चलो अभी भोजन करना है स्नान करना है, कीड़े मकोड़ों के साथ में पक्षियों के साथ में रहेगा, गंदे लड़के, ये कर करके उनको पकड़ करके और घर में ले आया और तोता भी पकड़ लिया और कृष्ण को बैठा, यहीं पर बैठो अभी स्नान करो, सखियों को लगा दिया नौकर चाकरों को और स्नान कराने लगे। कृष्ण का मन खराब हो गया किंतु यशोदा मैया के सामने कुछ कर नहीं सकते, परब्रह्म है, किंतु आज एक गोपी के सामने कुछ, यशोदा मैया के सामने कुछ नहीं बोल पाए, उनको भुला दिया। फिर वो तोता लेकर के और उनको दे दिया, वो लेकर के ये राधा जी की प्रिय सुख है। किंतु जब कृष्ण की लीला समाप्त हो गई, कृष्ण अंतर ध्यान गोलोक वृंदावन में जब चले गए लौट करके लीला समाप्त होने के बाद में, तो ये कृष्ण ने इस सुख को कहा जैसे देखो हमारे जाने के बाद में तुम इस जगत में रहना, रामचंद्र चले गए तो हनुमान को रख गए, क्योंकि उनकी कीर्ति को सबसे वो कहते थे और धर्म को उन्होंने बचाया, धर्म की रक्षा की। इसलिए हमारे बाद में जगत प्रसाद चला जाएगा, इसलिए तुम रह करके और भगवत की कथा को, हमारे लीला चरित्रों का तुम गान करना और जगत में भगवान की कथाओं का प्रचार करना। जगत में सब कुछ रहे और भगवान की कथा न रहे, भगवान का नाम रहे न रहे, सभी लोग असुर हो जाएंगे, अंत में ध्वंस उनका हो जाएगा। हम सभी भगवान के दास हैं, कोई माने और न माने, सभी भगवान कृष्ण के दास हैं। जो नहीं मानता वो अपने पाप से मरते हैं और जो बुद्धिमान है वो भगवान का नाम लेकर के चलते हैं। इसलिए सुख पक्षी को कहा, जो तुम रहो हमारी लीलाओं का जगत में कीर्तन करना और लोगों को सहारा देना, जिससे कि हमारे पास में चले। बड़े दुखी हो गए, प्रभु का आदेश भी टाला नहीं जाता, किंतु फिर भी जब वो चले गए तो इनका मन नहीं लगे। प्रभु तो चले गए, उनकी लीला सब समाप्त हो गई, वो लोग बैकुंठ में चली गई। इसके बाद में सुख पक्षी घूमने लगा कि कहाँ भगवान की कथा मिले उसे मैं सुनूं, और कब वो मौका मिले जो जगत में सब जगह में भागवत कथा का प्रचार करूं। सुस्ते 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 चले गए कैलाश में। शंकर और पार्वती जी वहां पर कैलाश में है, परम भगवत भक्त है, वैष्णवानंग यथासंभव, वैष्णव में सबसे गुरु हैं शंकर जी, भगवत तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे कि हरि और हर आत्मा एक है, उनसे बढ़कर के भगवत तत्व को जानने वाला दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं, इसलिए वैष्णव के बड़े पूज्य हैं और भागवत की कथा वो सब समय जानते हैं, राम की कथा को भी जानते हैं। उन्होंने ही भूसुंडी जी को राम की कथा सुनाई, उन्होंने भी उनको कौन से ऋषि लोमस ऋषि जी को भी उन्होंने ही कथा कही, उन्होंने ही पार्वती जी को कहा, उन्होंने ही नारद ऋषि को कहा, सब कथाओं के मूल ये शंकर जी हैं। वो यही कथा कह रहे थे, भागवत की कथा पार्वती जी सुन रही थी। एक पेड़ की झुरमुट में बैठ गए, हरियाली जहाँ पर थी, पत्ते अधिक थे, उसी के बीच में बैठ गए और सुनने लगे। स्त्रियों का स्वभाव कुछ होता है, रंगीली कथाएं होंगी तो जगी रहेंगी, और जहाँ तत्व की कथा आई बस हो जाए, तत्व अच्छा नहीं उनके दिमाग में नहीं जाता, कुछ है सबके लिए नहीं, पुरुषों में भी ऐसे हैं, स्त्रियों में भी ऐसे हैं, तो जब कथा समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे, सो जाएंगे। अभी कुछ कहानी के रूप में कह रहा हूँ तो ये समझ में आता, और जब जीव तत्व, माया तत्व, भगवान का तत्व, अपना तत्व, संसार क्या है जब कहने लगेंगे तो इसमें नींद आ जाएगी। तो वो पार्वती जी प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा, सृष्टि तत्व आया, जीव क्या है, भगवान क्या है, किसकी आराधना करनी चाहिए, जीव भगवान का नित्य दास है, जितने भी ईश्वर तत्व हैं, भगवत तत्व, इसमें कृष्ण ही परम तत्व है, एते चांस कलाप उनका कृष्ण स्तु भगवान। हम जब तक संसार के पचड़े में पड़े हुए हैं जन्म मरण होगा, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक दुख में पड़ेंगे। उद्धार का रास्ता एकमात्र भगवत भक्ति है, कृष्ण की सेवा है। जब इन चीतों को बतलाने लगे तो उनको धीरे 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 जम्भाई आई, जम्भाई के बाद में थोड़ी से ऐसी हुई आती, उसके बाद में सो गई, कथा पूरी समाप्त हो आई, अब थोड़ी सी बाकी थी उनकी नींद खुली। अब ये सुख पक्षी वहीं से बैठा हुआ पेड़ से हूँ हूँ आगे कहिए हूँ ऐसे हुंकारी भर रहा। शंकर जी सोच रहे हैं ये पार्वती जी हुंकारी भरती चली जा रही हैं और जगी नहीं सुन रही हैं, किंतु वो तो सो गई और सुख पक्षी सुन रहा, बड़े चाव के साथ में, बड़ी सावधानी के साथ में, लग्न के साथ में वो सुन रहा है, एक एक बात का वो पान कर रहा है। सुनना चाहिए तो ऐसे, ऐसा नहीं कभी सो गए कभी सुना, कभी इधर में बात कर रहे हैं, कभी उधर में बैठे, कभी उधर उसके तरफ में देख रहे हैं, तब हरी कथा नहीं आई। इसलिए पार्वती जी सो गई, ये हुंकारी भरता रहा, बड़े ध्यान से सब सुनता रहा। पार्वती जी उठी, तो जब प्रियतम हमने ये बीच की कथा सुनी, मैं तो सो गई, तो हुंकारी किसने भरी, हूँ किसने किया, तो मैंने तो किया नहीं। तो खोजने लगे, देखने लगे, देखते देखे पेड़ की आग में पत्तों के बीच में एक सुख पक्षी बैठा, जरूर इसी ने ऐसा किया होगा। मैंने कहा जी सारी ये भागवत की कथा सुन लिया, देवताओं के लिए भी ये सुनना बड़ा भारी कठिन है, और इसने कथा सुन लिया, अब इसे मारना चाहिए, नहीं तो अनाधिकारी दूसरी जगह ये कहेगा। जिनका अधिकार नहीं है, जिनको श्रद्धा है नहीं है, जो नास्तिक है वो उन कथाओं को नहीं कहना चाहिए, इसलिए इसको मारना चाहिए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और दौड़े मारने के लिए, वो उड़ा वहां से केदारनाथ से या कैलाश से। बद्रीनारायण अधिक दूर नहीं है, किंतु पहाड़ ऐसे हैं जिनको लंघन करके जाया नहीं जा सकता। कम से कम तो 300-400 माइल चमोली होकर के, त्रिजुगी नारायण केदारनाथ से त्रिजुगी नारायण इत्यादि होकर के और जोशी मठ होकर के और चमोली होकर के फिर इधर से जाना पड़ेगा, बहुत काफी रास्ता है। किंतु वह तो उड़ा और ऊपर से वहां पर एकदम झट पहुंच गया बद्रीनाथ। और शंकर जी भी उड़े तो जोगी महात्मा है वो भी वहां पर पहुंच गए मिनटों में। वहां पर व्यास जी अपनी पत्नी से बीटिका जी से यही कथा भागवत की कथा था, दशम स्कंद की कथा चल रही थी और वो बेचारे तन्मय होकर के सुनते हुए ऐसे करते हैं। इतने सुख पक्षी जाकर के और उनके मुख में घुस गया, पेट में चला गया। भोलेनाथ जी वहां पर आए त्रिशूल लेते हुए, बोले जी कोई सुख पक्षी इधर आया? नन्हे जी कैसे आप आइए बतलाइए तो आप कैसे पधारे यहाँ, किस लिए आए? एक सुख पक्षी उड़ता हुआ आया इधर। अरे आया नहीं आया हम पीछे बतलाएंगे आपको, उस सुख से क्या जरूरत है, उसने भागवत की कथा सुन ली है, वो अनाधिकारी है, उसे हम मारेंगे। अच्छा तो भागवत की कथा सुनने से क्या होता है? तो व्यक्ति अजर अमर बन जाता है, कभी मर नहीं सकता, जन्म मरण से अतीत होकर के भगवान के धाम में जाने लायक हो जाता है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब कोई मार ही नहीं सकता, अजर अमर हो गया तो उसे आप कैसे मारेंगे? तो शिव जी को अपनी गलती मालूम हुई, उन्होंने हंस दिया, भी हंस दिए और वहां से वो लौट करके चले गए। अब ये भागवत की कथा होती रही और वो पेट में बैठे बैठे 16 वर्ष तक वो कथा सुनी, कोई कहते हैं 12 वर्ष, कोई भी बात नहीं है, 12 वर्ष या 16 वर्ष उन्होंने पेट में रह करके सारी कथाएं उन्होंने सुनी, उपनिषदों का सार सुना, वेदांत का शास्त्र का सब कुछ सुना, इस तरह से श्रीमद भागवत का सार सब कुछ सुना। इसके बाद में व्यास जी ने कहा, अरे तू अपनी मैया के पेट में 12 वर्ष या 16 वर्ष से है, मैया को कष्ट हो रहा है, तुम निकल करके आता क्यों नहीं? वो बच्चे ने उत्तर दिया, अब वो बच्चा बन गया वहां, मैं इसलिए नहीं आता, ये माया है, माया मुझे पकड़ लेगी और मैं संसारिक व्यक्ति जैसा दुख सुख में मरूंगा और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाऊंगा, उस समय भगवान का ज्ञान यह लुप्त हो जाएगा, तो फिर कैसे आएगा? यदि कोई ऐसा हो जो माया को एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पलक के लिए यदि हटा दे तो मैं माता के गर्भ से निकल आऊं, मैं इसमें समर्थ हूं, मैं माया को हटा देता, तुम आओ। मैंने कहा है आपके ऊपर मैं विश्वास नहीं मुझको, यदि स्वयं कृष्ण आकर के कहें तो मैं मान सकता। व्यास जी ने कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए, उन्होंने ये सारी बात बतलाई। उन्होंने कहा अरे बेटे तुम मैया के घर में इतना दिन तक पड़ा हुआ है, क्यों तुम क्यों नहीं निकला था? मैं माया में जन्म लेना नहीं चाहता। अच्छा माया को मैं हटा देता, आप कौन है? मैं कृष्ण हूँ। तो ठीक है आप पर हमारा विश्वास। उन्होंने एक सेकेंड के लिए माया को हटाया। माया किसको कहते हैं? माँ या माने जो, माँ माने नहीं है, जो नहीं है उसको वही समझना, इसका नाम है। ये घर किसका है? मेरा है। तुम जन्म से पहले लेकर के आया, मरने के बाद में ले जाएगा? इस ईंट कहाँ से बना? तुमने बनाया? ईंट की मिट्टी किसने बनाई? पानी किसने बनाया? हवा किसने बनाया? ये खरीद करके कहां से लाएगा? इस पृथ्वी को किसने बनाया? तूने? नहीं, मैं इसका माता पिता नहीं, मालिक नहीं, माता पिता एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण है। सब कुछ सारी सृष्टि जो कुछ है सब है, वो हमारे माता पिता के माता पिता, भाइयों के भाई, बंधुओं के बंधु, वही सखा, वही सब कुछ है। इस चीज को समझना चाहिए। जो लोग इस शरीर को कहते हैं कि मैं हूं और इससे संबंधित समस्त सारी समस्त वस्तुओं को जो संबंधित है, ये घर मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरे हैं, ऐसा जो कहते हैं यही माया है, ये शरीर मैं नहीं हूं। उन्होंने एक सेकंड के लिए ये भाव उठा दिया और साथ ही साथ वो प्रकट हुए मैया के गर्भ से चले। उस समय नाड़ी भी नहीं कटी, कोई संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म इत्यादि जो संस्कार होते कुछ नहीं, और उसी समय घर से निकल करके चल पड़े। 16 वर्ष की तो आई थी ही, निकल करके चल पड़े। व्यास जी ने देखा बड़ा योग्य लड़का, संसार से अनासक्त, यही भागवत का सुनने का अधिकारी है, मैं इसके अतिरिक्त किसको भागवत सुनाऊंगा, इसलिए इसको सुनाना है। किंतु ये तो सुनता नहीं है, तो भागा जा रहा है। जब और गंभीर जंगल में जब चलते चले गए तो उन्होंने कहा जी हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने कुछ भी नहीं कहा, हा पुत्र और हा पिता, ये सबसे कोई संबंध नहीं, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, कौन किसकी स्त्री, वो तो सीधे चलते चले गए। जंगल से पेड़ों से प्रतिध्वनि आई, उन्होंने कहा हा पुत्र, और प्रतिध्वनि क्या आई, गूंज उठा जंगल हा पुत्र। जब उनके कानों में, व्यास जी के कानों में आई हा पुत्र, ये कहते हैं आओ उधर से, उधर से फिर से आई, कौन किसका पुत्र, इस चीज को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे। आत्मा अजर अमर है, शरीर में आने का नाम जन्म और शरीर छोड़ने का नाम मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। शरीर पुराना हो गया, कपड़ा पुराना हो गया, उसको छोड़ करके हम नए शरीर में जा रहे हैं, इसमें कौन से भारी जीव का। किंतु छोटा बच्चा जब कुर्ता निकालने लगते हैं उसका गंदा कमीज, तो रोता है, छटपटाता है, नया पहना देते हैं, जब पहनाने के समय तो रोता है, पहना दिया फिर ठीक हो गया। ऐसे हम लोग जन्म के समय भी रोते हैं, कहाँ कहाँ क्या 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 करता है, और मरने के समय भी बहुत दुख होता है, एक शरीर को छोड़ करके जिसमें इतनी आसक्ति थी, इसी का नाम संसार। भगवान को हम देखते नहीं, तो उस समय में प्रतिध्वनि हुई हा पुत्र हा पुत्र, और उनको भी छोड़ करके चले गए। जब आगे बढ़े, व्यास जी ने उनका पीछा किया, जो को पुत्र हमारे हाथ से निकल रहा है, इन्हें उसके पीछे पीछे चले। थोड़ी देर के आगे जब पहुंचे, देखा एक सुंदर सरोवर है, उसमें अश्वपरायण क्रीड़ा कर रही है। पहाड़ के लोग बड़े सुंदर होते हैं, लड़कियां भी बड़ी सुंदर, अश्वपरायण माने पहाड़ी लड़कियां, वो सब उसमें स्नान कर रही हैं। कुछ लड़कियां भी छोटी उम्र के हैं, वो नंगी स्नान कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी चलते गए, उनको देखा, कोई भी बात नहीं, खेल रही हैं स्नान कर। जब आगे बढ़ गए सुखदेव गोस्वामी, तो पिता ये व्यास देव जी आगे आए, सफेद लंबी लंबी दाढ़ी, केस पके हुए, सफेद सब, बहुत वृद्ध हो गए हैं, उम्र भी काफी है, बहुत काफी। लड़कियों ने झट लज्जा से कपड़े पहन लिए और उनके सामने आकर के जरा दूर से ही ऐसे प्रणाम करके नतमस्तक हो गई, सिर नीचा करके। उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा हमारा बेटा सुखदेव 16 वर्ष का लड़का, अभी नौजवान 16 वर्ष का किशोर लड़का है, परम सुंदर है, इसको देख करके लड़कियों को लज्जा नहीं आई, और मैं इनके पिता का पिता का पिता का पिता हूँ, हमारी नातिनी का नातिनी का ये लड़कियां हैं बराबर की, और हमको देख करके ये इनको लज्जा आई। पूछा लड़कियों से, तुम्हें लज्जा क्यों आई, हम उनसे हमारे बेटे से लज्जा तुमने नहीं किया, तो वो कहती हैं आपने तो ये पूछा कि तुमको क्यों लज्जा, उसने तो पूछा नहीं, उसमें और लकड़ी में कोई अंतर नहीं, उसको ध्यान नहीं कि ये लड़की है कि पेड़ है कि क्या है नहीं है, आपको तो ये ज्ञान है कि ये लड़की है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी संसार से परम विरक्त है, ऐसा ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी को कुछ दिनों के लिए व्यास जी ने महाराज जनक के दरबार में भेजा था उस ज्ञान की शिक्षा करने के। सुखदेव गोस्वामी नंगे उनके दरबार में गए, वहां पर पहुंच करके राजसभा के आगे जहां पर दरवाजा है गेट, गेट पर खड़े हो गए। महाराज जनक को पता पहले ही लग गया कि सुखदेव गोस्वामी हमसे पढ़ने के लिए पूछा रहा है शिक्षा के लिए। उन्होंने दरबानों को हुक्म दिया इसको 6 दिन तक उसके सामने रोके रखना, इधर में मत आने देना। यदि सच्चा संत नहीं होगा तो मान अपमान की भावना से निकल करके चला जाएगा। जिनको मान अभी तक है, अपमान का बोध है, जे मेरा अपमान हो रहा है, अभी सच्चा संत नहीं। जिनको क्रोध है, अभी नहीं, इसलिए रोक रखना। यदि 6 दिन तक वहां रहे तो 7वें दिन हमारे पास ले आना। 6 दिन रोक लिया, वैसे ही खड़े रहे, न भूख न प्यास न कुछ, ऐसे खड़े रहे। जब उन्होंने देखा कि इसका मान अपमान का कोई विचार नहीं, तो उसे अंदर बुलवाया। जब भीतर आए तो एक दरवाजे पर ड्योढ़ी पर, उनकी 7 ड्योढ़ियां थी। ड्योढ़ी माने समझते हैं ना, क्रमशः 7 दरवाजे पार होना होता। दूसरे द्वारी पर रोक दिया, किसी ने कुछ पानी के लिए नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, फिर भी ठीक रहे। तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचाया 7 दिन 8 दिन के बाद। वहां पर सुंदर किशोरी लड़कियों को वहां पर खड़ा कर, कोई पानी दे रही है, कोई फूल की माला पहना है, कोई चंदन पहना रही है, एकदम उनको आकर्षण करने की चेष्टा की। किंतु उनको कोई ज्ञानी नहीं कि लड़की है कि लड़का है, कि कोई है कि नहीं, मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने का आत्मज्ञान तत्व का अधिकारी, अपनी सभा बुलाया। सभा में वहां पर नारद जी बैठे थे, नारद जी बैठे हुए थे सिंहासन पर। जब ये सुखदेव गोस्वामी आए, उसी के एक बगल में उनको बैठा दिया। एक तरफ हो गए नारद जी, एक तरफ हो गए सुखदेव गोस्वामी, और अपने आप चले गए भीतर राजभवन में। अपनी सुनैना पत्नी को कहा, सुनैना जी परम सुंदरी सीता जी की मैया कितनी सुंदरी होंगी किशोर अवस्था में, ये से समझिए। वो उनको जाकर के बोलेगे, देखो 16 श्रृंगार 32 प्रकार के आभरण, इस प्रकार से सुसज्जित होकर के हमारे साथ आओ। थोड़ी देर में वो सब प्रकार से नख से सिख तक परम सुंदरी तो अपने ही हैं, और साथ साथ में आभरण अलंकारों को धारण करके और भी बड़ी सुंदरी होगी। उनको सभा में ले आया और दोनों के बीच में बैठा दिया। एक तरफ में बैठे नारद जी, एक तरफ में सुखदेव, एक बीच में बैठ गई सुनैना। नारद जी को पहली बात याद है, जानते हैं जी माया क्या है। तो जब उनको प्रणाम किया, मैया आपको प्रणाम है, और प्रणाम करके नीचे बैठ गए। और सुखदेव गोस्वामी जी को पता ही नहीं ये कौन बैठा है कि नहीं बैठा है। ऐसे परम विरक्त आदमी भागवत का सुनने का अधिकारी है, पहले ये समझो। इस श्लोक में उसी की वंदना की, सुखदेव जी कैसे हैं, ये भागवत के श्रवण के अधिकारी। जिसको काम है, क्रोध है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, लोग भागवत के अभी श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। महत्पुरुषों का संग करें, फिर महत्पुरुषों की सेवा करें। महत् कौन है, जिनको भगवत भक्ति है वो महत्पुरुष। जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि संसार में भूले भटके हुए जीवों को ये कृष्ण तत्व देना है, ये तुम भगवान के दास हो, भगवान की सेवा करो। क्रमशः उनको निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि दे, तब वो भागवत का पाठ अधिकारी सुनने का होगा। तो इसलिए ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, जो सचमुच में भागवत श्रवण के अधिकारी हैं, और जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को ये कथा को सुनाया। कैसे सुनाया, इस कथा की अवतारणा की वैसे बड़ी सुंदर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, हमको समय हो जाएगा तो बतला देना, 1 घंटे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह द्रोण जैसे लोग, कर्ण और अस्थामा जैसे लोग, कर्ण उनके पक्ष में थे पांडव दुर्योधन के, उसके तरफ से केवल 3 आदमी बचे, बाकी सब मारे गए। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ में, अपने पुत्र और कलत्र सबके साथ में मारा गया, बस 3 आदमी रहे, अश्वत्थामा और कृतवर्मा और द्रोणाचार्य के साले कृपाचार्य, बस 3 आदमी बचे और कोई नहीं बचा। और इधर में कृष्ण बचे और 5 पांडव बचे, सारे लोग मारे गए। पितामह अभी तक शरीर यह बाण पर अभी सोए हुए हैं, उत्तरायण आएगा तो जाएंगे। उत्तरायण हुआ, पांडवों को शिक्षा दी, उसी का नाम है शांति पर्व। और ये महाभारत का भीष्म पर्व का ये 18 अध्याय ये गीता है, महाभारत की ये रत्न है। किंतु पहली पोथी है धर्मराज की, और भागवत है पीएचडी की अंतिम पुस्तक है भागवत, उसमें प्रेम का पाठ है और इसमें तत्व का ज्ञान है। पहले जो गीता नहीं पढ़ेगा भागवत नहीं समझेगा, इसलिए पहले गीता समझो इसके बाद में भागवत में प्रवेश। तो क्या बतला रहा था
ये पांच इधर पंचपांडव
केवल और सब नहीं बचे। जब ये समाप्त हो गया तो कृष्ण देखा कि जितने असुर थे उन सबका तो ध्वंस हो चुका, किंतु अभी कुछ बाकी हैं। जिस कांटे से मैंने कांटा निकाला उस कांटे को भी फेंकना है। ये कांटे को निकालने वाला कांटा क्या था? यदुवंशी। यदुवंशियों के द्वारा सबका ध्वंस कराया असुर लोगों को, धर्मात्मा केवल बचे रहे। और इसके बाद में अपने वंश को भी लड़ाई में उनको समाप्त कर दिया। वो लोग भी जब चले गए तब उन्होंने आदेश दिया अर्जुन को ये अपने पुत्र परीक्षित जी को, अपने प्रपौत्र परीक्षित जी को अपने हस्तिनापुर का राज्य देना और मथुरा का राज्य हमारे प्रपौत्र हैं, पुत्र के पुत्र के पुत्र वो हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ को देना। ऐसा आदेश देकर के वो चले गए। पांडव लोग भी चले गए। पांडवों के बाद में इधर में परीक्षित राजा हुए और इधर हुए
बद्रीनाथ।
कुछ दिनों के बाद में कृष्ण के जन्म के तिरुभाव के बाद कृष्ण के अप्रकट होने पर ही कलिकाल का समय आ गया, द्वापर युग समाप्त। महाभारत के हो जाने के बाद में जिस दिन कृष्ण ने छोड़ दिया इस जगत को उस दिन से कलिकाल आ गया। एक दिन परीक्षित जी कहीं गए हुए थे, मृगया गए थे या युद्ध विजय करने के लिए गए थे, वहां से बड़े भूखे प्यासे लौट रहे, बहुत प्यास लगी। वो जाकर के देखा जिसे यहाँ पर जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। उन्होंने देखा एक ऋषि बैठे हुए और एकदम ध्यानस्थ है, पैर से पैर कर सकते योगी की मुद्रा में बैठे हुए और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय महाराज परीक्षित वहां पर उपस्थित थे। परीक्षित महाराज जी बड़े परम धार्मिक हैं, कृष्ण की कृपा है उन पर और कृष्ण को, कृष्ण ने इनको अपनी गोदी में खिलाया था, गर्भ में अपनी इनका इनकी रक्षा की थी। इतने बड़े ज्ञानी हैं तो भी भागवत को प्रकाश करने के लिए ऐसा भी नहीं किया। कहा जी से जोगी लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इधर मुझे प्यास लगी है, प्यासे को पानी नहीं पिलाया और ध्यान कर रहे हैं तो उसे क्या लाभ है? इस धर्म का कोई माने नहीं, जैसे आजकल के लोग कहते हैं। आजकल के लोगों के लिए ऐसा भी नहीं किया। लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान क्या। आई थिंक, मैं सोचता हूं क्या मंदिरों में जाने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना अच्छा है। ये विवेकानंद जी कहते हैं, आई प्रेफर टू रीड गीता देन टू गो इन टेम्पल
प्ले फुटबॉल,
या मैं फुटबॉल खेलना समझता हूँ, उसे शरीर में ताकत आती है। मंदिर में जाने से क्या होगा? मंदिर में वहां पर भगवान है, गरीबी दरिद्र ही भगवान है, तो धनियों ने क्या कसूर किया, मछलियों ने क्या कसूर किया कि उनको मार करके खा जाते हैं। इन्हें उसमें धर्म कर्म की कोई बात नहीं, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आजकल विवेकानंद जी को बहुत सम्मान देते हैं, किंतु हमारी संस्कृति के व्यास जी के विचारों को, सुखदेव गोस्वामी के विचारों को, हमारे रामानुज मध्य आदि विचारों को उन्होंने नहीं ग्रहण किया। वो शून्यवादी एक तरह से थे, बौद्धवादी थे, इसलिए बौद्धों को जैसे इस देश से निकाल दिया गया। अब फिर बौद्ध आ रहे हैं क्योंकि कलिकाल है ना, शून्यवादी, हम शून्य से आए हैं, शून्य में मिल जाएंगे। हम लोग की ये थ्योरी नहीं है। हम लोग की थ्योरी क्या है? पूर्णम क्या है?
पूर्णम
मदम,
पूर्णम
इदम, पूर्णम इदम, पूर्णम उदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेव आदाय, पूर्णमेव उचित। पूर्ण से ही यदि पूर्ण भी ले लें तो वो पूर्ण रहता है। इन्फिनिटी माइनस एनी अमाउंट, इवन सब कुछ उसमें है ले लिया जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्ण माइनस एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो, कोई भी अदद हो, पूर्ण में से लिया जाए, यहां तक कि पूर्ण से पूर्ण भी ले लिया जाए तो वो पूर्ण ही रहता है। ये कृष्ण भगवान है, बाकी सब चीजें अपूर्ण है, हम उनके अंश। हमारी ये संस्कृति है। तो क्या बतला रहा था,
ये क्या पानी नहीं पिलाएगा?
हाँ, पानी नहीं पिलाया। लोग कहते हैं कि पानी नहीं पिलाएगा, ये धर्म क्या? अरे जिनको होश ही नहीं है, ब्रह्म में चित्त लगाए, वो चाहे तो अपने ध्यान से करोड़ी करोड़ी लोगों को, विश्व ब्रह्मांड को पानी पिला। इसलिए भगवान में उनका चित्त लगा हुआ है, इनको होश नहीं, इनकी बातों को सुना नहीं, उन्होंने इनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने एक सांप मरा पड़ा था, उसको उठाया और उनके गले में लगा दिया, क्या तुम्हारे लिए यही पुरस्कार है, यही तुम्हारा अभिनंदन है। अभी वोट में जीत करके जाएंगे ना कोई कार में, या उनके लिए रथ बनाया जाएगा, विजय रथ, उस पर चढ़ करके जाएंगे, गजरों की माला से हजारों हजारों लाखों मालाएं उनके गर्दन में आ जाएंगी और निकालते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, ये एक स्वागत है, अभिनंदन। तो उनके लिए, तुम्हारे लिए यही अभिनंदन है, तुम किसी को पानी नहीं पिलाता तो तू मरा हुआ है, मानो ये भाव को दिखला रहे। उन्होंने गले में जब तीन बार उनको लपेट दिया, आप चले गए। जब जा रहे हैं सोचते थे, अच्छा यदि ये सचमुच में ये ऋषि हुआ और सचमुच ये भगवान को ध्यान कर रहा होगा तो हमारी क्या गति होगी? तो मैं गया रसातल में, वैष्णवों का, संतों का, महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए, तो मैंने तो अपमान कर दिया। अब ये सोचते सोचते जा रहे थे, इतने में ऋषि का एक छोटा सा 5 वर्ष का लड़का खेल रहा था, ऋषि का नाम था समीक ऋषि, उनका पुत्र खेल रहा था 5 वर्ष के नंगे बच्चों के साथ। बच्चों ने कहा, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप डाल दिया है, सांप डाल दिया। बस झट उसने हाथ धोया, नदी बह रही थी, नदी से पानी आचमन किया और आचमन करके गायत्री मंत्र इत्यादि पाठ किया और पानी ले लिया, होठ कांपने लगे क्रोध से, आंखें लाल हो गई, वही छोटा सा बच्चा जिसने हमारे पिता के गले में यह सर्प लगाया, सातवें दिन यही तक्षक और उसे डसेगा और उसको कोई नहीं बचा सकता, जरूर मरेगा, यह कहकर अभी संपात पानी छोड़ दिया, ऐसे ही जगह और जाकर के पिताजी की गोदी में बैठ करके रोने लगा। पिताजी के कुछ देर के बाद में उसका रोना सुन करके सुना जो थे वो उठ गए, होश हुआ, ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तू रोता क्या है? पिताजी आप देखते नहीं आपके गले में सांप है, किसने लगाया, तुमने ये क्या किया? तुम अज्ञानी बालक, जिन ब्राह्मणों को सहिष्णुता नहीं है, क्षमा गुण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं, तू ब्राह्मण का लड़का शायद नहीं, ये मेरे अंदर में कोई दोष होगा इसलिए तू ऐसा पैदा हुआ। एक धर्मात्मा राजा, तुमने उसको ऐसा भी संपात कर दिया, परीक्षित को तुमने अभी संपात किया, अरे वो नहीं रहेंगे तो जगत में प्रजाएं अधार्मिक हो जाएगी, स्त्रियां अपने रास्ते पर चल नहीं सकेंगी, दिन दहाड़े उनको लूट लिया जाएगा, सच्चे लोग जो धार्मिक हैं वो लोग चल नहीं सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले इधर भी हो रहा था, गुंडागिर्दी होती थी, अभी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच चल रहा था, ऐसे बंगाल में भी कभी कभी होता है, जहाँ पर राजा का शासन अच्छा नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति नहीं होते, उनके राज्य में ऐसा ही होता है, सभी लोग बड़े दुखी रहते हैं। तो तुमने क्या किया, उस राजा को तुमने अभी संपात कर दिया, उसके मरने के बाद में क्या होगा यह कभी विचार नहीं किया? सोचे तो जो होना था वही हुआ, खैर इसमें को कर तर्क बढ़ा वही साखा, तर्क बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक छात्र को बुलाया, बटू इधर आ, परीक्षित महाराज जी गए हैं अभी हस्तिनापुर, अभी जा रहे होंगे, तुम जाकर के कह देना ये सातवें दिन उनको तक्षक दसेगा, ऋषि के पुत्र ने ऐसा साफ दिया है, वो जो कुछ करना है अपना कर ले परमात्मा। ये जल्दी से दौड़ता हुआ गया, वो राजधानी में अब प्रवेश करने वाले ही थे, इतने में कुछ जाकर के कहा, महाराज गुरु जी ने संवाद दिया है, सातवें दिन आपको वही सर्प काटेगा जिसको आपने गले में लगाया था। तो कहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो, ओह मेरा कल्याण आज तो, ये तो अभी साफ नहीं, ये तो वरदान है मेरे लिए, मैं सोचता था जो हमारा कहीं परमार्थ नष्ट न हो, शरीर नष्ट हुआ ये तो आज न कल जाने वाला है, इसमें कोई बात नहीं आ रहा है समझ में ना, शरीर आज कल जाएगा, किंतु इसमें से यदि परमार्थ नष्ट हो गया, मैं कृष्ण का सेवक हूँ दास हूँ, ये भाव नष्ट हो गया और भक्ति की वृत्ति नष्ट हो गई, भगवान के प्रति भक्तों के प्रति श्रद्धा नष्ट हो गई तो ये सर्वस्व हो गया। ये शरीर मिला अभी तो दूसरा नया मिल जाएगा, एक सुकर अभी शरीर है वो कहीं मनुष्य शरीर ले लेगा, जहां भी जाएंगे ये सब चीजें मिलेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु यदि इसमें भक्ति यदि नष्ट हो गई होती, हमारा धर्म नष्ट हो गया होता तो हमारा तो सर्वस्व हो जाता। जैसे ये प्रभु का वरदान है, हमको अब ये संदेश आया, हम लोगों के लिए चार प्रकार के संदेश हैं। जिस समय में केस पक जाए तो समझो ये पहली घंटी हो गई, आंखों की रोशनी कम होने लगे तो समझो क्या ये दूसरी घंटी है, शरीर दुर्बल होने लगा तो समझो दांत टूट गया, और पांचवी घंटी में जय सियाराम, बस तैयार हो जाओ वहीं से। हम लोग तैयार नहीं, हम सोचे ये पौरुषी माल लेकर के आए हैं, पट्टे पर लिया है इसको, ये पट्टा नहीं चलेगा, किरायेदारी और किराए मकान और किरायेदार का यहाँ पर केस 10-10, 20-20 वर्ष चलता है, वहाँ पर एक सेकंड नहीं चलेगा, मकान को खाली करना पड़ेगा, अभी अभी आदेश आया, एक सेकंड की विलंब नहीं होगा, अभी छोड़ देना पड़ेगा शरीर, इस चीज को समझो। कब आएगा फरमान कोई पता नहीं, इस चीज को समझो। इसलिए परीक्षित महाराज जी वहीं पर अपना मुकुट उतार करके फेंक दिया, धनुष मार वहां पर रख दिया, राजकीय पोशाक रख दिए, एक धोती पहन लिया बस, और वहीं से गंगा के तट पर। राज्य का क्या होगा, कौन रहेगा पालन करेगा, ये सब कुछ व्यवस्था नहीं थी, इसकी व्यवस्था होती रहेगी, हठात यदि मर जाएंगे तो कौन व्यवस्था करेगा संपत्ति की, इसलिए संपत्ति की व्यवस्था वो हो जाएगी अपने आप। बस चले गए और गंगा में स्नान किया और उसी पर बैठ गए गंगा जी के सामने, और वहीं पर प्राय उपवेशन किया, प्राय उपवेशन मैंने क्या खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु की चिंता करना, अब मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन में। और इतने में भारतवर्ष के 88,000 ऋषि नारद जी, व्यास जी, कपिल जी, गौतम जी, कभी हभी अंतरिक्ष पलायन इत्यादि ऋषि लोग, सनक सनंदन सनातन ये सब ऋषि लोग, जितने भी वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि जितने ऋषि हैं, सब बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं, सब लोग वहां पर उपस्थित, बेतार का तार अभी जो चल रहा है ना, ये इससे भी बहुत उन्नत, सब लोग अपने आप वहां पर उपस्थित हो गए। और इतने में एक छोटा सा बालक आया, सांवला सा, परम सुंदर, नंगे, स्त्रियां उसके ऊपर में धूल डाल रही थी, बच्चे कंकड़ मार रहे थे, कोई ताली बजाई, पगला आया, ये कौन था, उनको भ्रूक्षेप नहीं, कौन क्या कर रहा है। जब सामने आए नारद जी उठ करके खड़े हो गए, व्यास जी उठ करके खड़े हो गए, ऋषि लोग सब खड़े हो गए, ये महाराज परीक्षित आसन छोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और सब लोगों ने इनको लेकर के राजकोट सिंहासन पर बैठा दिया, जहां पर ये मैं बैठा हूँ, इसको कहते हैं व्यास आसन। भगवान की लीला कथाओं का जो वर्णन करता है उसको क्या कहते हैं, व्यास। व्यास मैंने एक सेंटर से, एक पॉइंट से लेकर के चारों तरफ में जो सर्किल खींचा जाता है वो तो सर्किल हुआ, और ये मूल केंद्र बिंदु हुई, और इस केंद्र से जितनी भी लाइन है जो केंद्र से उस सेंटर तक सर्किल के एक पॉइंट से मिलाती है, इसको कहते हैं व्यास। जो भगवान की लीला कथाओं को एक सेंटर से भगवान से रहते हुए भी सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड में प्रचार करता है उसको कहते हैं, जो उस तत्व में प्रतिष्ठित हो। अब ये व्यास जबकि वहां पर बैठाया, इसे उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, यही तक मैं समाप्त करूं, प्रश्न उनका चरण सुन लीजिए, आप लोग विचार करें। पहला प्रश्न ये महाराज, मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, व्यास जी की कृपा पर हुई है, इसलिए आप पहला प्रश्न ये है मेरा कि सभी जगत में मरेंगे, किंतु अभी इनको मरना निश्चित हो गया, ये एक दिन में मरेंगे, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, और आज न कल न परसों जरूर मरेंगे। जिसने जन्म लिया जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव में जन्म मिल सकते, जो मरे हैं उनको भी जन्म लेना होगा, अभी जो बच्चे हैं उनको भी मरना पड़ेगा, और जो मर रहे वाले हैं वो भी फिर जन्म लेंगे। जब तक ही भगवान की भक्ति नहीं होगी, दिव्य ज्ञान नहीं होगा, तब तक मरते जन्मते रहेंगे, इसी का नाम है भव चक्र, इसी का 99 का फेर कहते हैं, इसमें जो घुस गया निकलना बड़ा बात है। तो जो अभी मरने के लिए तैयार है, मृत्यु है, उनको क्या करना चाहिए। उस समय दान दक्षिणा करने से होगा कुछ? तपस्या करेंगे न योग करेंगे, ये सब काम कुछ नहीं होगा। और जो आज न कल न बरसों जो मरने वाले हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है, यही हमारा प्रश्न है। बड़े प्रसन्न हुए और इन्हीं का जो उत्तर दिया गया इसी का नाम फागु। भगवान अपने पाने के लिए जो कुछ भी उपाय बतलाते हैं उन उपायों को ही भागवत कहते हैं, इसी का नाम है भागवत। कृष्ण ने स्वयं अपने पाने के लिए जीवों को उनको सुखी शांति बनाने के लिए नित्य काल सुखी रहने के लिए जो उपाय बतलाए हैं भागवत में उसी को कहते हैं भागवत। इससे बढ़कर के वो कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही है जीव मात्र का, चाहे वो क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध कोई भी हो, पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं सबका एक ही धर्म है, क्या? भगवान की सेवा। अब रहने के लिए जो धर्म आजकल हो रहे हैं ये सब रहने के लिए कुशलता के लिए ये नीतियां केवल मात्र हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म बदला नहीं जा सकता। आज एक हिंदू है मुसलमान हो गया तो ये तो बदल गया, तो ये धर्म कहाँ रहा? कोई ईसाई है ईसाई से हिंदू बन गया। कल एक मैंने देखा इलाहाबाद के ब्राह्मण, उनको कल देखा जैसे वो दाढ़ी ओढ़ी रखकर, मैंने कहा जैसे आपको इस रूप में देखा, मैं अब ईसाई धर्म ग्रहण कर रहा। उनका नाम क्या हो गया, क्या फ्रेडरिक या क्या नाम उनका हो गया, मैंने एक दिन में बदल गया। ये धर्म नहीं है, धर्म बदल नहीं सकता। इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा और इसके बाद में कल। अभी हम लोकेशन करके आरती करके आज समाप्त। जय 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 सभी लोग बोलो जो
हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय।